شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بات کر دی، اور مال دولت کے خرچ کی بات ہوئی تھی، تو اس کے اندر حکمت کی بات کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد یہ ہے کہ مال کو کہاں خرچ کرو۔ بعض دفعہ ہوتا کہ ہم جان چھڑانے کے لیے اپنا خرچ لگا دیتے ہیں، پکڑا چندے کا ڈبہ، دیکھا اس میں ڈال دیا۔ اس کو اگر آپ زمین سے ہی مثال لیں تو کسان جب کہیں بھی بیج ڈالتا ہے تو کیسے ڈال دیتا ہے؟ پہلے چیک کرتا ہے نا کہ زمین کون سی زیادہ فرٹائل ہے، جہاں زیادہ فصل آتی ہے، پھر موسم دیکھتا ہے، پھر اس کے اندر محنت دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں انسان $100 دیتا ہے، دو لوگ ہیں $100 کا نوٹ لے کے نکلتے ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص اس 100 سے اگر 700 بنا لیتا ہے، اللہ کی رحمت سے، اخلاص سے دے رہا ہے، کوشش بھی کی، اچھا بھی کیا، لیکن ایک دوسرا شخص ہے اسی 100 سے 70,000 ڈالر اور اس سے بھی بہت زیادہ لے سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ دینے سے پہلے سوچے گا کہاں دے رہا ہوں، یہ کہاں لگ رہا ہے، یہ صرف کھانا پینا ہی تو نہیں پورا کر رہا، یہ صرف ایسی جگہ پہ تو نہیں لگ رہا کہ میرے سے تو برا ٹل گیا لیکن اس سے ضرورت پوری نہ ہوئی۔ یعنی سوچ کے دیجئے، کبھی اپنے مال کو ضائع نہ کریں، کبھی اس طرح جان نہ چھڑائیں۔ آپ اپنا ایک روپیہ بھی ضائع نہیں کرتے، جو چیز لیتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ اتنی ویلیو کی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی مثال دیتے ہیں کہ اللہ سے یہ حکمت مانگو کہ اللہ میں ایسی زمین پہ خرچ کروں جہاں سے میرے لیے صدقہ جاریہ کی فصلیں اگتی رہیں اور آگے سے آگے بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے، اور میں اس کو زیادہ سے زیادہ لوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں آیت 267 میں اگر آپ ایک حصے کو ہائی لائٹ کریں، اس کی بنیاد پہ ہم تھوڑی سی بات اب بغض پہ کریں گے، اور بہت ہی زیادہ ایک دکھتا ہوا مضمون ہے جس کو کہتے ہوئے بھی میرے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقت ہے۔ اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ تم ناپاک، گندی، خراب چیزیں دینے کا دوسروں کو ارادہ نہ کرو، اگر کوئی تمہیں یہ دے دے تو تم تو آنکھیں بند کر لو۔ ہم یہاں پہ اب بخل کے دوسرے مضمون، جس کو مروت سے ہم نے دیکھا تھا، اس کی بات کریں گے کہ جب ہم اپنے گھر کے ملازموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو کیسے بخل کرتے ہیں۔ اور اس پورے مضمون کو کہتے ہوئے یہ بات سامنے رکھیے کہ جو میں کسی کے ساتھ کر رہی ہوں، کیا میں پسند کروں گی کہ میرے ساتھ بھی کوئی ایسے کرے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہمارے کلچر میں، اچھا یہاں چھوٹی سی بات یہ بھی کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ ہم سب ادھر ہیں، یا یو ایس اے، کینیڈا میں رہنے والے، یورپ، لنڈن میں رہنے والے، ان کو یہ باتیں اتنی شاید اپ ٹو ڈیٹ نہ لگیں کیونکہ یہاں وہ حالات ہی نہیں ہیں۔ لیکن اپنی ماضی کو دیکھ لیں، ہم جب اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں، یا آج بھی اگر ہمارے بھائی بہنوں میں کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو پھر اپنے لیے تو توبہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو بھی اس چیز کو ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو بخل ہوتا ہے وہ گھر کے ملازمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ سچ فخر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے سب سے کم تنخواہ والا ملازم ڈھونڈا۔ بعض دفعہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا ملازم تو یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور صرف اس کو میں 2,000 روپے دیتی ہوں۔ دوسری عورت کیا کہتی ہیں؟ ہاں اچھا، میرا تو صرف جو ہے وہ کھانا ہی پکاتا ہے، میں تو اس کو 3,000 دیتی ہوں۔ اور عموماً بیگمات اور جو خواتین ہوتی ہیں بڑے گھروں کی، وہ اس بات پہ بہت زیادہ فخر کرتی ہیں کہ ہم خوب کام کراتے ہیں، خوب رگڑا دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے پیسے تھوڑے ہی دیے۔ پھر بعض دفعہ نوکروں کے سب بخل ہوتا ہے کہ وقت پہ ان کو تنخواہ دی نہیں جاتی، ایسا ہوتا ہے، پھر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی ذرا زیادہ دینا تو کہتے ہیں دیکھو تم زیادہ دے رہی ہو نا تو ان کا ریٹ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ پسے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر تم نے ان سے کام زیادہ کروایا اور پیسے کم دیے تو سمجھو کہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ دیکھا گیا کہ بازاروں میں جا کر بخل کیسے ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہزاروں کی شاپنگ کرتے ہیں، بڑی دکانوں پہ گئے، مالز میں گئے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قیمت پوچھیں، کیونکہ وہاں تو بات کرنا ہی خلاف تہذیب لگے گا، لیکن جب آتے ہیں سبزی والے کی دکان پہ، ٹھیلے والے کی دکان پہ، تو بارگیننگ، یہ کتنے کی گٹھی ہے، یہ 10 रुपए की 2 गठियां हैं धनिए की, नहीं मैं तो 3 लूंगी। ये केले कितने के, वो कहता है ये 50 रुपए दर्जन है, कहते नहीं मैं तो 20 रुपए दूंगी। उसको भी गरीब को पता है कि ये मेरे तो ख़राब हो ही जाने हैं, मैं इसको दे देता हूँ। हज़ारों की शॉपिंग की हुई, और वो बच्चे बेचारे जो बीच में फिर रहे होते हैं कि लाएं हम आपका सामान उठा दें इतवार बाज़ारों जुम्मा बाज़ारों में, तो आप क्या करते हैं खूब वो आपके साथ 1-1 घंटा फिरता है। आपने 2-3 हज़ार की शॉपिंग की और बाद में उसको 5 रुपये पकड़ा दिए, और फ़खर काका ज़्यादा देंगे तो रेट ख़राब हो जाएगा। ये बुखल है कि नहीं है? कभी भी छोटी छोटी जगहों पर पैसे ना बचाएं। रिक्शे वाले पे के साथ जो बुखल होता है, वो बेचारा अगर 25 मांग लेता कहते नहीं हम तो 20 देंगे, हर रोज़ जाते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं। हाँ, कभी भी छोटी छोटी जगहों पे ये काम ना करें। आप जितना काम किसी से लेते हैं उसको उतना तो दें, ज़्यादा नहीं दे सकते। बस वो होता है कि लोग बुखल को किफ़ायत शारी कहते हैं, ये बड़ी किफ़ायत शार है, और सारी किफ़ायत शारी हम करते हैं तो मुलाज़मों और ग़रीबों पर करते हैं, बड़ों पर नहीं करते। बाज़ दफ़ा आप देखिए घरों में मुलाजिम होते हैं, वो अकेले हैं, चले अगर आप उनको 1,000 रुपया दे रहे हैं उनकी हो सकता है गुजर बसर हो जाए। अब अगर उसी मुलाजिम की शादी हो जाती है और बच्चे वाला है बीवी वाला है तो आप उसको पैसे ज़्यादा दें। बात लोग क्या करते हैं, तनख्वाह कम देते हैं, कहते हैं ऊपर से कुछ दे देंगे। ये ऊपर से पता क्यों देते हैं? कि ताकि इनके ऊपर हमारा हाथ रहे, वो हिल ना सकें। अपनी ज़कात भी घर वालों को और नौकरों को देने लगते हैं, नतीजा क्या होता है कि वो इनके आगे इतने ज़्यादा अपने आप को आजिज़ महसूस करते हैं कि इनको छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा ना करें, इससे उनकी तनख्वाह ख़त्म होगी। अगर आप कभी नबी सल्लम के दौर को देखें ना, तो बहुत अमीर सहाबा भी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, लेकिन कभी भी कोई गरीब सहाबी उनसे नफरत करता हुआ नहीं दिखा। जैसे हबाब बिन औरत, अब्दुल्ला बिन मसूद, ये गरीब सहाबी थे। वजह क्या थी कि जिनके पास माल ज़्यादा था उनके दिल खुले हुए थे। आज क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इस तरह बुखल करते हो। फिर इसी तरह कुछ और मिसालें हम देखेंगे कि सदका करते वक्त अमूमन अमली ज़िंदगी में हम क्या करते हैं। मसलन आप देखिए कि आप किसी को अपना सूट देते हैं, आप कहते हैं चलें जोड़े बहुत हैं अब एक जोड़ा दें। आप किसी गरीब बेचारे को जिसके पास गर्मी को पहनने का कपड़ा भी नहीं, आप अपना कोई 3-4 साल पुराना पहना हुआ जोड़ा निकाल के देते हैं। देते देते एकदम आपकी नज़र पड़ जाती है उस पर लगी हुई लेस पर, आप कहते हैं देखो लेस तो अभी भी अच्छी है, इसको उधेर लेते हैं। ये बटन, ये तो मैंने इतने महंगे लिए थे, बटन भी उधेर लिए और देने लगे। अरे दुपट्टा ये तो इतना प्यारा है, मैं इसके साथ एक और जोड़ा बना लूँगी। और वो नुचा खुचा जोड़ा उस गरीब को दिया। ये क्या होगा? ये सदके का बुखल है। नौकर को खाना देते हैं, कैसे देते हैं? पहले तो उन बेचारों की जरूरत नहीं कि वो खाना खा लें जो आप खा रहे हैं, उनको 3 दिन का पुराना खाना देंगे। और अगर कभी कोई मांग ले कि ज़रा मुझे ताज़ा खाना दें तो कहते हैं दिमाग ख़राब है। गोया के सब जो ताज़े खाने खा रहे हैं उनके दिमाग तो ख़राब ही हैं, हाँ अपना तो दिमाग कभी ख़राब नहीं लगा। और अगर कभी हंडिया से उनके लिए खाना निकाल रहे हैं और ज़रा उसमें कोई टांग की बोटी, कोई बड़ी बोटी आ गई, कहते हैं ये दूंगी इसको, नहीं पतली सी गर्दन निकाल के डाल देंगे और साथ कहेंगे अच्छा चलो एक साथ पर भी डाल देते हैं, 2 बोटियाँ दी थी उसको। ये क्या है? फल दे रहे हैं उन गरीबों को सबसे छोटा टोकरे में से निकाल कर, वो भी जिस सेब को थोड़ा सा दाग लगाओ, और वो बेचारा आगे से बोल भी दे कि ये सही नहीं तो कहते हैं काट लेना बाकी तो ठीक है। आप सोचिए वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। बखील चौस से कभी कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, कितना को खाएगा कोई? और अब बेचारा जिसने पकाया, जिसने खिलाया, पक जाता कहते हैं खबरदार इसको छोड़ो, वो फ्रिज में 4 दिन की दाल रखी है वो खा लो, क्या ये बुखल नहीं है? कितनी उसकी इज्जत नफ्स पे हम हाथ डालते हैं। फिर आप देखिए दूसरी एक और मिसाल नौकरों के साथ बुखल की क्या होती है। मिसाल है कि हम बैठे हुए थे सोफ़े पे, आप कोई मुलाजमा आ गई कोई बात करने, कोई पूछने, क्या वो हमारे साथ सोफ़े पे बैठ सकती है? या आप अचानक घर जाएं और अपनी मासी या घर की मेड या जो भी बच्चों को रखती है उसको आप देखें कि वो आपके सोफ़े पे टेक लगा के बैठी है, तो हम कहेंगे ये अपने आप को बेगम साहिबा समझती हैं। देखो हालांकि फ़र्क क्या है, देखिए अल्लाह की निगाहों में आपके और उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। ये गरीब है, सिर्फ यही कमी है ना इनमें, आपके बच्चे का बिस्तर खाली पड़ा हुआ है, बच्चे घर में नहीं, मुलाजमा बच्ची सो रही है उसको फिर नीचे ज़मीन पर ही सुलाएंगे, कहते नहीं ये गंदे हैं, उसी गंदे हाथों ने आपका सुबह बिस्तर बिछाया था। सारा दिन जी हमारा घर साफ करते हैं और जब मौका आता है इनका तो हम कहते हैं नहीं इनको अपने पास नहीं बिठाएंगे, अपने साथ बिठाए तो इनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर आप देखिए कि बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि बर्तन उनके अलग रख देते हैं, ये कांच के बर्तन है ये हमारे। किसी जगह आप देखिए सिंक के पास एक पुरानी किनारा टूटा हुआ प्लेट पड़ी होगी, कोई ऐसा कप होगा जिसका कि एक डुंडी निक है, ये मासी का बर्तन है। और वो खाना लेने भी लगेगी ना तो पहले वो स्टील का या प्लास्टिक का हमक आता हुआ ग्लास लेगी, सोच नहीं सकते हम कि वो हमारे शीशे के ग्लास में पिए, और पूछें तो कहते हैं ये बड़े गंदे लोग होते हैं, इनके दांतों में कैविटीज़ हैं। आप अपने मेहमानों के दांतों को चेक करते हैं जो रोज़ आते हैं? पहले आप चेक कराएं कि आपके दांत गंदे तो नहीं, साफ़ नहीं। उनकी गंदगी क्या है कि उनके अंदर गुर्बत है। इस बुखल से अपने आप को बचाना है। आप देखिए कि बहुत दुखता है दिल बखील का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बखील तो कितना बदकिस्मत है कि दुनिया में भी तो महरूम रहता है और आखिरत में तो अजाब का शिकार होगा। फिर इसी तरह बहुत सारी किस्में बुखल की बनती हैं। मसलन सलाम करने में बुखल। कोई आया आपके पास, उसने आपको बड़े प्यार से कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और बिलफर्ज़ आप ज़रा दुखे बैठे थे उससे, तो आप कहते हैं वालेकुम। ये क्या, ना स्माइल ना बात, यानी लफ्ज़ों से तो बात करो। अल्लाह ताला कह रहे कौलु मारूफ़ुन खैरुन, अच्छी बातें तो कर दिया करो। मीठा नहीं खिला सकते, मीठी बातें तो कर दो। क्या हो गया, इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? बात तो सिर्फ सर हिला देते हैं, और ज़रा ज़रा मूड में बैठे हैं तो सिर्फ़ गर्दन का इशारा। हाँ, बड़ी शान बेनियाजी कि हम तो सलाम भी नहीं देंगे। हाँ, सलाम करेंगे पैसे वालों को, बड़े लोगों को, और गरीबों से क्या तवक्को करते हैं कि वो हमको सलाम करें। कुछ करें हल्का सा। आप देखिए, फिर एक और मामला देखा गया अमूमन घरों में कि बच्चों को भी बुखल सिखाते हैं, और वो क्या होता है, माँ बड़े प्यार से बच्चे का लंच बॉक्स बना रही है, खूब अच्छा सैंडविच बनाया, उसमें चिकन पैटीज डाल ली, उसमें बर्गर बना के, और साथ ही माँ कहती है अब सारा खुद खाना, खबरदार किसी और को दिया। ऐसा कहते हैं, हाँ, ये बड़ा भोला है, ये सारा दूसरों को खिलाता है। ये आप ख़ुद अपने बच्चों के लिए समझे कि रोड़े अटका रहे हैं। बचपन से ये कंजूसियाँ सिखाई जाती हैं। बाज़ दफ़ा अपनी चीज़ें उनको आप मना करते हैं कि शेयर ना करें। फिर इसी तरह आप देखिए कि मेहमानों के साथ भी कुछ बुखल होता है। अच्छा, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया बुखल? यानी अगर मैं पहले से पूछ लेती ना, अपने आप से भी पूछती और आपसे भी पूछूँ कि क्या आप बखील हैं, या हमारे इर्द गिर्द कोई बखील रहता है, तो आप कहेंगे नहीं, वो पता नहीं कहाँ होते हैं, माशाल्लाह हम तो नहीं। लेकिन जब आप अमली ज़िंदगी की मिसालें देखते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि चारों तरफ सिर्फ बुखल रखा हुआ है। मसलन मेहमानों के साथ बुखल क्या हो रहा है? अब आप घर में बैठे हुए थे और बच्चों ने बाज़ाहर से पिज़्ज़ा मंगवाया, गरम गरम पिज़्ज़ा आया, इतने में बेल बजी और आपकी दोस्त अपने दो चार बच्चों को लेके आ गई। अब बच्चों का तो दिल पहले ही बैठ गया। अब क्या होगा, मम्मी छुपा दें? छुपा दो, पिज़्ज़े की खुशबू से छुपता फिर भी नहीं है। हाँ, और वो फ्रिज में दो चार दिन का पुराना बचा हुआ सालन है, उसको गर्म करके कहेंगे ये खिला दो। हाँ, फ्रेश केक आया है, उसको छुपा दो और मेहमानों को बासी बिस्किट खिला दें। छोटे छोटे बुग़ज़ हैं, यकीन करें, उनको तो हम बहुत खिलाते हैं जिनसे हमारा दिल चाहता है। मैके से कोई आए तो खूब खिलाते हैं, और ससुराल से आए तो बस छोड़ दें। हाँ, बच्चों को खिलौने छुपा दो, वो आ रहे हैं ख़राब कर देंगे, छोटा सा बच्चा। फिर बाज़ दफ़ा माएँ कूड़ कबाड़ जमा करती रहती हैं, और 25 साल के होने पे बच्चे को कहती है देखो तुम्हारे बचपन के लेके अब तक के सारे खिलौने मैंने संभाले। कुछ लोग जो बखील होते हैं ना, उनकी एक पहचान है कि उनके घर में कूड़ कबाड़ बहुत जमा होगा, टूटी कुर्सी, बोतलों के ढक्कन, डब्बे हैं। और कोई कहे तो मासी कहते भाई बाजी ये मैं ले जाऊँ आइसक्रीम का डब्बा, कहते क्यों, ये तो हमारे काम का, आराम से बैठो। और आप देखें फिर वो उन्हीं को संभालते रहते हैं, फिर कहते हैं हम घर छोटा हो गया। फिर बड़ा घर लेंगे तो सर स्टोर भी चार गुना बड़ा लेंगे, वो गंदा सामान भी साथ साथ चलता है, क्या करना है, इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि किफ़ायत के नाम पे जो बुखल होते हैं ना, वो तो आम ख़वातीन बड़ी अक्लमंद समझती हैं अपने आप को। किफ़ायत चारी और चीज़ है, फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए बुखल क्या है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी ना लगाना, और किफ़ायत चारी क्या होती है कि थोड़े को फैला देना। मसलन आपके पास थोड़ी सी चीज़ थी लेकिन इतने सलीके से आपने उसको इस्तेमाल किया, काम आ गया। मसलन मियाँ की तनख्वाह थोड़ी है तो ना आप बच्चों के कपड़े रेडीमेड लेके आए बाज़ार से घर में सी लें, बहुत अच्छी बात है, ये बुखल नहीं है। आप ना बाज़ार का खाना रोज़ खाएं, आप उस खाने को घर से पका लें, घर में पका लें। सुगढ़ होना, सलीकाशार होना, ये बुखल में नहीं आता। फिर एक और बुखल हमारे यहाँ अमूमन देखा गया तोहफ़ों के मामले में। कोई चीज़ मिल गई अच्छी नहीं लगी, कहते हैं रख दो, लेने देने के काम आएगी। और कुछ जोड़े तो इतने बदनसीब होते हैं, उनका काम ही सिर्फ ये, वो फिरते हैं आगे शादियों का लेन देन, ये उस शादी में देंगे। कुछ ने तो चार साल से रखा होता है कि ये फलां की ही शादी में दूंगी। हाँ, ख़राब से ख़राब चीज़, घटिया चीज़ उठा कर रखते हैं। दुकानदार के पास जाएंगे शॉपिंग करने, कहते हैं वो ज़रा कोई लेने, वो कोई जोड़ा दिखाएगा, कितने का, ये 2000 का, नहीं नहीं हमें लेने देने वाले चाहिए, कोई 400-500 वाला जोड़ा दिखाओ। और ख़ास तौर पर अगर वो मासियों की ईद के जोड़े हों, कहते हैं 100 रुपये से ऊपर का नहीं चाहिए, जो एक दफ़ा धुलेगा तो उसका रंग भी उड़ जाएगा और वो फिर कहेंगे तुम्हें कदर ही नहीं, तुम्हें नया जोड़ा दिया था, 2 धुलाइयों में तुमने पुराना कर दिया। ये सब चीज़ें देखने की है। बाद दफ़ा कोई चीज़ देंगे, बीच में थोड़ी निकाल लेंगे, नहीं ये तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी मैं रख लेती हूँ। हाँ, पुरानी चीज़ को किसी नए डब्बे में डाल के पैक किया, कोई चीज़ पसंद नहीं आई, रखी थोड़ी देर, नहीं इस्तेमाल हुई, उसको फिर उसकी पैकिंग में डाल दिया कि अब इसको डालते हैं। देखिए वो आयत सामने रखी है کہ تمہیں کوئی دے تو تمہیں کیسا لگے. کبھی کسی کو کچھ دیں تو فوراً سوچ لیں کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. پھر اگلا دیکھیے, اس میں ٹاپک ہے کہ جذبات کا بخل. جذبات کے بھی انسان بخیل ہوتے ہیں. مثلاً کوئی بہت خوش ہے, آپ اس کی خوشی پہ خوشی نہیں, دل میں کوئی حسد پالا ہوا یا بغض ہے, آپ اکھڑے اکھڑے پھر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان دوسرے کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے. مبالغہ نہ کریں لیکن خوشی کا اظہار کریں. پھر اسی طرح کوئی بڑا غم زدہ ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا ہوا, ٹھیک ہے, صحیح ہوا. یعنی کوئی مرتا ہے اور آپ کی ہنسی نکلتی جا رہی ہے. بیلنس رویہ کیا ہے, وہ بھی نہ کریں جو عموماً لوگ کرتے ہیں. باہر سے خوب باتیں کرتی ہوئی خواتین جا رہی ہوتی ہیں اور جو ہی میت کا گھر سامنے آیا تو یوں پھر دھاڑے مار کے روئیں کہ سب سے زیادہ غمین کو ہے. جو ہی کوئی دیکھا گھر میت کے قریبی لوگوں میں سے سامنے تو رونا شروع ہو گئیں, اور ذرا ادھر گئیں تو باتیں شروع ہو گئیں. یہ جذبات کا بخل ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور بخل اسی میں جذبات میں آتا ہے کہ جس کی تعریف کرنا چاہیے اس کی تعریف بھی نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کسی کے اندر بہت اچھا کام ہے, اچھا کھانا پکاتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھا گھر رکھتا ہے, کبھی تعریف نہیں کرتے. لو میں کیوں کروں, پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ اچھا لگا ہے. کھانے کی تعریف صرف اس لیے نہ کی کہ وہ پھر سوچے گا کہ شاید اس نے تو آج تک کبھی اچھا کھانا ہی نہیں کھایا. کسی کا واقعہ سن رہی تھی کہ کوئی کسی جگہ صاحب گئے تو کھانا پکا, تو انہوں نے کھانے کی بہت تعریف کی, کہا کہ کھانا بہت اچھا ہے. تو خاتون تک جب بات گئی جس نے کھانا پکایا ہوا تھا تو وہ رونے لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رونے لگ گئیں, تو کہنے لگیں کہ میں 40 سال سے اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہوں, آج تک انہوں نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی, تو میں آپ کے منہ سے کھانے کی تعریف سن کے رو پڑی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس طرح اس میں تعریف کے بخل میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے ملازم میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں, آپ کی ماسی ہے, اس نے بڑا اچھا گھر صاف کیا, تعریف کریں اور بڑھیں گے. آپ کسی فیلڈ میں, مثلا اگر آپ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اچھا کام کرے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کے بچے کبھی کوئی اچھا کام کرے نا تو کہتے ہیں لو کیا ہوا, میں بھی تو تمہارا اتنا کرتی ہوں. نہیں, کوئی سر پہ نہیں چڑھتا, مناسب کام کریں اچھی طرح رہے گا. پھر اس طرح ایک اور بخل ہوتا ہے سوری کہنے پر بخل. مثلا بعض دفعہ آپ نے کسی ماسی کو غصے میں ڈانٹ دیا, آپ کوئی کام کر رہے تھے یا پریشان تھے یا آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی, ماسی نے کچھ آ کے کہہ دیا یا بچے بیچارے نے کچھ پوچھا, آپ نے شروع ہو گیا آپ اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اب بعد میں آپ کو احساس ہوا تو آپ کیا کہتے ہیں, اب میں نہیں پوچھ رہی. نہیں, فوراً جائیں کہیں دیکھیں اس وقت میں بزی تھی یا پریشان تھی, آپ نے کوئی بات کر دی تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیں. اور اس طرح سے آپ غلطی مانیں گے نا تو ان کے دل میں آپ کی بہت زیادہ عزت ہوگی.